نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے اہلن و سہلن مرحبا ان سب لوگوں کو جو قرآن کے سفر کے لیے آج تیار ہو کے بیٹھے ہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفوان بن اسال حاضر ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سرخ چادر لے کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو مبارک ہو. طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور طالب علم سے محبت کی وجہ سے اوپر تلے قطار بنائے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرحبا فرماتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. اہلاً وسہلاً مرحبا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آج میں نے آپ سے آج کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ دو نفل پڑھ کے آئیے گا کلاس میں، کیونکہ ہماری پہلی کلاس ہے. بہت سارے لوگ جوش میں ایک فارم فل کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید فارم فل کر دینا ہم نے پوری اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، ذمہ داری ادا کر دی. حالانکہ فارم فل کرنا ایک پہلا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد بے شمار قدم ہیں جو اٹھانے پڑیں گے منزل تک پہنچنے کے لیے. آج جب میں نے دو نفل ادا کیے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورت الناس پڑھی ہے، اس لیے کہ بہت سارے اشارے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، دنیا کی طرف سے بھی بہت رکاوٹیں آتی ہیں، اور شیطان مردود تو ہمارا دشمن، وہ تو بیٹھا ہی ہوا ہے ہمیں بہکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ لیتے ہیں شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اور انسانوں کے وسوسوں سے. یہ انسان بھی، جو شیطانی قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں جب ایک انسان اللہ کے راستے کی طرف آنے لگتا ہے، قرآن کی طرف آنے لگتا ہے. ہم نے دو ہفتے پہلے الحمدللہ اپنا پچھلا کورس مکمل کیا، جس میں سورۃ الناس پہ ہم نے بات ختم کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن پڑھ کے بھی یہ نہ سمجھنا کہ مکمل ہو گئے، تب بھی تمہیں اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے. یہ پورا راستہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا، اس کے بعد اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان اور تیزی سے تم پر حملے کرے گا. اور آج شروع کرتے وقت بھی ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ ملے گی شیطان مردود سے، کیونکہ اس کے حملے اور تیز ہو جائیں گے جب وہ دیکھے گا کہ آپ ایک ایسے سفر کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو علم کے راستے پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سوچ کو بدل دینے والا ہے، عمل کو بدل دینے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پہ جما دے، کیونکہ اس کی ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پناہ اتنی مضبوط ہو شیطانی اور انسانی شیطانوں کے وسوسوں سے محفوظ رکھ سکے، اور وہی ہے جس کی توفیق سے تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں. اگر اس کی توفیق نہ ہو تو کوئی کام نیکی کا ہم مکمل نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کم ہمت ہیں، अल्लाह तू हमें इस रास्ते पर जमा देना, मजबूत कर देना, हमारे कदमों को साबित रख देना, हमारे कदमों को जमा देना, हमारी मदद फरमाना, हमारे लिए आसानियां फरमा देना। और जैसे जैसे हम ये सफ़र तय करें, हमारे अमल में वो तमाम आयात आ जाएं जो जो हम पढ़ते जाएं। ऐ अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत बना देना, क़यामत के दिन ये हमारे हक में सिफारिश ही कराओ। ऐ अल्लाह हमने पहला कदम तेरी तरफ बढ़ाया, तेरे कलाम की तरफ बढ़ाया। ऐ अल्लाह तो हमारे कदमों को साबित रख, हमारे कदमों को साबित रख, हमारे कदमों को साबित रख। हमारी आखरत की मंजिलें इसकी वजह से आसान कर देना, हमारे लिए जन्नत का रास्ता इसकी वजह से आसान कर देना। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे कलाम को तू ही दिलों में उतार सकता है, किसी और में ये ताकत नहीं, ये तेरा कलाम है। तेरी दीवी तौफीक के बगैर हम इस रास्ते को अबूर नहीं कर सकते, ये बड़ा भारी कलाम है, तो हमारे दिलों में इसको उतार देना, हमारे सीनों को इसके लिए खोल देना। अल्लाह हमें जमा देना, अल्लाह हमें जमा देना अपने रास्ते पर। अल्लाह हमारे इस अमल को हर रियाकारी से महफूज रखना, अल्लाह हमारे इस अमल को हर बदनीयती से महफूज रखना। अल्लाह हमारे इस अमल में इखलास अता फरमाना, हमारे लिए इसका सीखना, इसका समझना, इसके साथ वक्त गुजारना, इसके ऊपर अमल करना, इसके हर रास्ते में मेहनत करना आसान फरमा देना। कि तेरी दी हुई तौफीक की हमें ज़रूरत है, अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा, इसके लिए बैठना यहाँ पे हमारे लिए आसान फरमा दे, हमें हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखना, अल्लाह हर किस्म के वसवास से इस रास्ते में महफूज रखना। अल्लाह तू हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें अपनी पनाह में ले ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो इस कुरान को सीखे और सिखाए। तो इस दुनिया में जो बेहतरीन लोग हैं आज आप उनमें शुमार हो गए, क्योंकि आज आप कुरान सीखने का सफर शुरू करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ बिहादल किताबी अक़वामन, अल्लाह ताला बेशक इस किताब के जरिए कौमों को उरूज अता फरमाता है, व यदाउ बिही आखरीन, और अल्लाह ताला इसको तर्क करने की वजह से कौमों को जलीलो ख्वार कर देता है। तो इसी कुरान के जरिए लोगों को बुलंदी हासिल होती है, इज्जत हासिल होती है, और इसी कलाम को छोड़ने की वजह से लोगों को जवाल और पस्तियां और जिल्लत उनके लिए लिख दी जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। तुमने कुरान को छोड़ा है तो तुम ख्वार हो गए हो, ये कुरान को छोड़ने का नतीजा है कि आज दुनिया में तुम जलीलो ख्वार हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूनुस में, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास मौइज़ा नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, व शिफाउन, और शिफा, लिमा फिस सुदूर, उसके लिए जो सीनों में, व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नसीहत है रब की तरफ से, इसमें शिफा है सीनों के लिए, इसमें हिदायत है, और इसमें रहमत है ईमान वालों के लिए। कितनी सारी चीज़ें हैं ना आपके लिए, कितनी बड़ी खैर है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुल बि फ़ज़लिल्लाहि व बि रहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कह दीजिए ए नबी, आप कह दें कि बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और इस रहमत पर खुश होना चाहिए। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। तो इस रहमत पर जिसकी तरफ आज आप कदम बढ़ा रहे हैं, इसका ऊपर आपको खुश होना चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आप अल्लाह के इनाम की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया रहमा, हुदा, शिफा, मौइज़ा, ये सब इसके नाम है इस कुरान के, इसकी तरफ आज आप बढ़ रहे हैं। तो ये मुआवजा कैसे है? वाज उस नसीहत को कहते हैं जिससे दिल नरम हो जाते हैं। तो जब दिल नरम हो जाए तो ये कुरान उनमें जज़ब हो जाएगा। तो ये दिलों को नरम करता है। इसी तरह जो बातनी बीमारियां हैं, तकब्बुर है, हसद है, हुब्बे दुनिया है, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत, इसका भी इलाज हो जाएगा। फिर ये हिदायत है, ये तुम्हें रास्ता बताएगी कि तुम्हें किधर जाना है किधर नहीं जाना, कौन सा रास्ता ऐसा है जो तुम्हारे रब को राजी करने वाला है और कौन सा ऐसा रास्ता है जो तुम्हारे रब को नाराज कर देगा। और आखिरत में रहमत है, दुनिया में भी रहमत है, आखिरत में भी रहमत है। तो ये अल्लाह की रहमत और उसके फजल का मजहर है कि इसने तुम्हें यह अता किया। तो खुशियां मनानी हो तो इसकी खुशी मनाओ, और जान लो कि जो कुछ दुनिया में तुम जमा कर रहे हो, इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बढ़ के कीमती चीज आज तुमको मिल रही है, और वो है ये कुरान अजीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम है। और अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया, उसने तुम्हें कुरान सिखाया। सारे उलूम अल्लाह ही ने सिखाए हैं, लेकिन चोटी का इल्म जो है, टॉप का इल्म जो है, वो है इल्म कुरान। और इसकी निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ फरमाई कि ये रहमान की रहमत है कि उसने तुमको कुरान जैसा इल्म अता फरमाया। तो ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत है जो आज आपकी तरफ आ रही है। तो खुद कुरान पढ़ें, सीखें, और उसके बाद इसको आगे सिखाने की फिक्र करें, इसको आगे बढ़ाने की फिक्र करें। इसको सिर्फ सिर्फ नाजरा पढ़ लेने तक इक्तफा ना करें। सिर्फ ये ना सोच के आए कि हमने इस कुरान को टेक्स्ट सीखना है, या कोई लोग ये सोचेंगे हमने सिर्फ तर्जुमा सीखना है। नहीं, आज ये नियत करें कि हमने इस कुरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को बदलना है, मैंने एक नया इंसान बनना है। ये कुरान वो है कि जिसके इतनी ज़्यादा अजमत है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि यह कुरान अगर अल्लाह ताला किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो क्या होता। वो पहाड़ खशियत से, अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। ये इतना अजीम कलाम है, इतना अजीम कलाम है। तो जो दिलों पे जब नाजिल होता है ना ये कुरान, तो दिलों को भी रेजा रेजा करके, इंसान को भी रेजा रेजा करके एक नया इंसान बना देता है। अंदर टूट फूट होती है, एक नया इंसान बनता है। ये इस तरह इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी जिंदगी बदल गई। तो लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर अल्लाह ताला फरमाते अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो तुम देखते वो दब जाता, फट जाता अल्लाह की खशियत से। तो आज देखते हैं कि इस सफर में कितने लोग हैं जो इनके ऊपर ये कुरान उतरता है, क्योंकि वाकई हमारी जिंदगियों में तो आज ही उतर रहा है ना। हम जो इससे पहले नावाकिफ थे, हम नहीं जानते कुरान में क्या है, उनके लिए तो ऐसे ही है जैसे आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल हुई और आज हम तक पहुंच रहा। तो पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ तो दब जाते, फट जाते। देखते हैं कि हम में से कितने हैं जिनके दिल दब जाएंगे इस कुरान के आगे, फट जाएंगे अल्लाह की खशियत से, आंसू बहने लगेंगे। तो इसका मकसद यही होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को बदल दें, हम अल्लाह के आगे दब जाएं, हमारे दिल दब के, टूट के और नए दिल बने। और सबसे बड़ा मकसद कि हम रब्बानी बन जाएं, रब वाले बन जाएं। वलाकिन कूनू रब्बानी यीना, लेकिन तुम हो जाओ रब्बानी। अल्लाह ताला का ये फरमान है सूरह आले इमरान में। रब्बानी कौन होते हैं? रब वाले, रब वाले, जिस जो रब को टूट के चाहने वाला हो, जिसके दिल में रब की मोहब्बत डेरे लगा ले, छा जाए, सारे दिल को कवर कर ले, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हों, चाहने वाले हों। अल्लाह ताला हम सबको रब्बानी बना दे। तो कुरान से ऐसा जी लगाना है कि अंदर टूट फूट के हम अब रब्बानी बन जाएं, अंदर एक हरारत महसूस होने लगे, अब दुनिया वाले नहीं अब रब वाले कहलाएं, अब कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि ये रब्बानी जा रहा है, रब वाला। इंशाअल्लाह ताला इस सफर को शुरू करने से पहले अपने दिल को खाली करना है, पहली बातों से, पहले तसव्वुरात से, जो जहन में पहले कुछ अकीदे हैं, कुछ माँ बाप की तरफ से या आबाओ अजदाद की तरफ से जो डाले हुए हैं वो हैं, उन सब से अलग होके खाली उस जहन होके इस कुरान की तरफ आना है कि अब ये कुरान जो कुछ मुझे देगा मैंने लेते जाना। देखिए अगर आप पिछले तसव्वुरात, पिछली मालूमात ये लेकर आएंगे तो जिस बोर्ड पे पहले से कुछ लिखा उस पे तो कुछ लिखना मुश्किल है। आप कब नई तहरीर लिख सकते हैं किसी भी बोर्ड पे? जब वो साफ हो, है ना? तो जब साफ होता है तो नई तहरीर लिखी जाती है, लेकिन जब पहले से कुछ लिखा हो, पहले से माइंड बना के आए कि हमने नहीं बदलना, हमने टस से मस नहीं होना, जो लिखा हुआ पहले से वही लिखा रहेगा, तो फिर ये कुरान दिल में जज़ब नहीं हो सकेगा। जब ये सोच लिया है कि नहीं हम तो आबाओ अजदाद के ही दीन पर रहेंगे और उसी पे चलेंगे, तो फिर ये कुरान फायदा नहीं देगा। ये नियत करनी है कि जो जो कुरान कहता जाएगा, जैसे जैसे कहता जाएगा, मैं वैसे वैसे चलती जाऊंगी। तो दुनिया में तो ये क्या देता है, दुनिया में ये इंसान को बेहतरीन इंसान बना देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुना दी है कि जो जो सबसे बेहतरीन वही है जो क्या है, जो कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला। और उसके बाद कुरान का इल्म क्या देता है, जन्नत में क्या देगा, एक तो जन्नत का रास्ता आसान कर देगा, और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक महफिल होगी जिसमें सिर्फ इल्म वाले होंगे और कोई नहीं होगा, वहाँ कुरान के हरूफ, इसके अल्फाज, इसके माने पे बात होगी, वहाँ अल्लाह ताला जो उलूम का फैजान फरमाएगा इसमें वो इस तरह डूब जाएंगे कि उनको सारी जन्नत भूल जाएगी, जो मज़ा वो वहाँ पाएंगे सारी जन्नत इस मज़े को जान ही नहीं सकती। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती सिर्फ सुन लेने से या सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से या सिर्फ कुरान के स्टूडेंट हो जाने से, ये तो चलती रहती है, ये तो वो समंदर है जिसमें जितना गोता लगाना चाहें इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है, इसके पांच हकूक हैं जो हर मुसलमान पर है। सबसे पहला इसका हक ये है कि इसको ऐसे माना जाए जैसे मानने का हक है, यानी इस पे ईमान लाना। दूसरे, इसको ऐसे पढ़ा जाए जैसे पढ़ने का हक है, यानी इसकी तिलावत सही तरीके से की जाए, सही मखारिज के साथ, सही जेर जबर की गलती के बगैर, और इसे समझा जाए जैसे समझने का हक है। और वो ही समझने के लिए आज हम बैठे हैं, यानी इसकी आयात को सीखना, समझना, इन पे गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया फला या तदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान के ऊपर तदब्बुर नहीं करते, कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते, इनके दिलों पे क्या ताले लग गए हैं? और इसका चौथा हक ये है कि इस पर अमल किया जाए जैसे अमल करने का हक है। लेकिन जो बंदा सीखेगा तो अमल करेगा ना, जिसको ये पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या हुआ है, जिसको पता ही नहीं कि ये कुरान कहता क्या है, अल्लाह ताला की मुझसे डिमांड क्या है, वो कैसे इसके ऊपर अमल कर सकेगा? जो जानता ही नहीं कि ये कौन सा रास्ता दिखा रहा है, वो कैसे अमल करेगा? फिर पांचवा इसका हक ये है कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए, इसको फैलाया जाए, इसको आम किया जाए। और अगर ये हकूक अदा नहीं करते हम, तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है अगर ना अदा करें? याद रखें, कुरान पाक के हकूक को अदा ना करने वाला कुरान को छोड़ देने के बराबर है। क्या सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया, وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا, और पैगंबर कहेगा यानी कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ए अल्लाह, इन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शिकायत फरमाएंगे। और इसको छोड़ना क्या है? इसको छोड़ना क्या, हम सोचते हैं कि हमने तो नहीं छोड़ा। इसको छोड़ना ये है, अगर कोई इसकी तस्दीक ना करे, अगर कोई इसमें गौर व फिक्र ना करे, अगर कोई इस पर अमल ना करे, इसकी तिलावत ना करे, इसकी सही तौर पे किरात की तरफ तवज्जो ना करे, इसको छोड़ के दूसरी लगवियात में मसरूफ रहे, हकीर चीजों की तरफ मुतवज्जे रहे, ये सब सूरतें दर्जा बदर्जा कुरान को छोड़ने के तहत इसके हुक्म में दाखिल होती हैं। ये सब कुरान को छोड़ना है। इंसान दूसरी चीजों में तो बहुत टाइम लगाए, आप रिसाले भी पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पे भी ब्राउजिंग करते हैं, आप फेसबुक पे भी होते हैं, आप टीवी भी देखते हैं, ड्रामे फिल्में वो सब चीजें, लघवियात के अंदर तो आपका बहुत वक्त गुजरता है और उसमें तो वक्त का एहसास भी नहीं रहता। लेकिन कुरान की तरफ आना यह मुश्किल लगता है, इसके लिए बैठना मुश्किल लगता है, इसके लिए वक्त लगाना मुश्किल है। तो बहसियत मुसलमान, हम पर कुरान पाक के जो भी हकूक आयद होते हैं, अगर हम इनको अदा नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल और इस फरियाद का इतलाक हम पे भी होगा। यानी ये समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ मुद्दई की हैसियत से कयामत के दिन खड़े होंगे। इसके बावजूद लोगों को आज इसकी अहमियत नहीं है, इसके सीखने की, इसके पढ़ने की सही, इसको आम करने की, इस तरफ तवज्जो है ही नहीं, इस पर अमल करने की इसको जरूरत समझा ही नहीं जाता। तो उनको सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 दिखा दे, ताकि ये सब के ऊपर जाहिर हो जाए कि कुरान पाक का सीखना, इसका समझना कितना जरूरी है और इसको छोड़ना क्या है। हम सब ने इसको छोड़ा हुआ था आज तक, आज इसको थाम ले और ऐसे थामे कि जिंदगी भर फिर इसका साथ नहीं छोड़ना। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं और इसको कुरान पाक में दो मकामात पे कुरान पाक के हकूक अदा ना करने वाले को कहा गया कि ये कुरान की तकजीब करते हैं। याद रखें, जो ये हकूक नहीं अदा करता ना, आप लाख समझ लें कि आप कुरान पाक पर ईमान रखते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर आप इसके हकूक की अदायगी अपनी ताकत के मुताबिक, जितनी आपके अंदर इम्कानी हद तक आपकी ताकत है, जितनी आपकी कुव्वत है, अगर आप वो इसमें सर्फ नहीं करते इसके हकूक अदा करने में, तो असल में आप कुरान को झुटला रहे हैं, झुटला रहे हैं इसको, इसकी तकजीब कर रहे हैं। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में फरमाया, उन लोगों की मिसाल जो तौरात को उठाने वाले थे, फिर उन्होंने इसकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, तो उस गधे की तरह है जो किताबों का बोझ उठाए हुए हो। यानी फिर तो किताब उनके लिए ऐसे ही है जैसे एक गधे ने बोझ उठाया। अगर हम कुरान पाक के हकूक अदा नहीं करते ना, तो ऐसे ही है जैसे हमने कुरान का बोझ उठाया हुआ है, क्योंकि गधे को उसके ऊपर जो भी लादा जाए वो उसको कुछ फायदा नहीं देता, उसको पता ही नहीं मेरे ऊपर क्या लादा हुआ। चाहे आप सोने की ईंटें उसके ऊपर लाद दें या पत्थर लाद दें, उसको क्या, उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे कुछ बोझ उठाया हुआ। तो यही हमारा हाल है कि अगर हम कुरान की तरफ नहीं आते, इतनी अजीम किताब, इतना अजीम कलाम हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उस गधे की तरह ही हैं कि इसको पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी रहमत है। उसके लिए जहां और उलूम है, जहां और किताबें पढ़ी हुई हैं बेशुमार उसके बुक शेल्फ में, वहां एक ये भी सही, बस इसके अलावा, इससे ज्यादा उसके पास इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर दूसरी आयत सूरह वाकिया के तीसरे रकू में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला उकसिमु बिमवाकिन नुजूम, ये आयत 75 से लेकर 82 तक, बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौके की, और अगर तुम समझो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है, इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून, ये महफूज किताब में सब्त है, जिसे पाक छूते हैं, ये रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है, तंजीलों में रब्बुल आलमीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कलाम आया है। अफ बिहादल हदीस अंतुम मुदहिनून, फिर क्या इस के कलाम के साथ तुम बेतनाई बरतते हो, इससे बेतवज्जोही करते हो, इसको कोई अहमियत का हामिल नहीं समझते, इससे दूर भागते हो, इसकी वर्थ नहीं समझते, इसको तवज्जो के लायक नहीं समझते। तुम्हारी तवज्जो के लायक हर दूसरी चीज है, क्या ये कुरान ही नहीं है? वतजालूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकद्दिबून, और क्या तुम अपना हिस्सा इसमें यही रखते हो कि तुम इसको झुटलाते हो, यानी क्या तुम्हारा हिस्सा यही है इसमें कि तुम इसकी तकजीब करते हो, और तकजीब इस माने में भी है कि कुरान का इनकार किया जाए, और इस माने में भी तकजीब है कि इसकी जिम्मेदारियों को अदा ना किया जाए, कि फिर तुम्हारा हिस्सा सिर्फ इतना ही है कुरान में? सोचिए आपका हिस्सा क्या है इस कुरान में, सिर्फ इसको बेसोचे समझे पढ़ लेना, और वो भी 90% लोग सही पढ़ना नहीं जानते, तो पढ़ने का भी हक अदा नहीं होता, उससे आगे सीखना और समझना तो दूर की बात है। तो क्या इस कलाम से तुम सुस्ती बरतते हो, क्या तुम इसकी नाकदरी करते हो? ये नाकदरी तो है कि हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा कलाम हो, उसकी बात हो मेरे बुक शेल्फ में पड़ी हुई, और मैं कहती हूँ, कहती फिरती हूँ मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, मैं उसकी बड़ी मोहताज हूँ, और फिर उसके कलाम को उसकी बात को मेरी इतनी भी तवज्जो ना मिले कि मैं चंद घंटे जिंदगी के चंद अय्याम, आधी जिंदगी तो पता नहीं गुजर गई कि आधी भी है कि नहीं है, जो रही सही जिंदगी है बच गई, वो मैं इतनी इस काबिल नहीं समझती इस कलाम को कि मैं इसको तवज्जो दूं, मैं इसकी तरफ अपना रुख कर लूं। अब तो कह दूं कि बस हो गई, बहुत दिन दे दिए दुनिया को, बहुत साल दे दिए, अब तो मैं इस कलाम की तरफ आऊं, क्या ये कलाम इस काबिल नहीं है? क्या मेरा यही हिस्सा है इस कलाम में कि मैं इसको झुटलाती रहूं, इसकी जिम्मेदारियां पूरी ना करूं? तो अल्लाह ताला हमसे इस कुरान की जिम्मेदारियों को पूरा करवाए, अल्लाह ताला इसके तमाम हकूक अदा करने वाला हमें बना दे। तो इंशाल्लाह ताला आज जो सफर शुरू करना है, अल्लाह ताला से मदद मांग के करना है, अगर दो नफल नहीं अदा किए तो अब करने हैं, और दो नफल अदा करके सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से तहे दिल से ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस कलाम को आपके दिलों में उतार दे। अल्लाह ताला इस कलाम का हक अदा करने वाला बना दे, इससे हमारा तज़किया कर दे, हमारे अंदर बाहर को पाक साफ कर दे, हमारा जाहिर बातिन इसके जरिए पाक हो जाए। ये वो कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पाक में माहिर होगा वो मुअज्जज और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ रहता है, उनके साथ होगा क़यामत के दिन। सोचे फरिश्तों के साथ, और कौन से फरिश्तों के साथ? जो बड़े बाइज्जत हैं, बड़े बुजुर्ग फरिश्ते हैं, उनके साथ होगा जो इसका माहिर बनेगा। तो कौन कौन इसका माहिर बनना चाहता है कि वो फरिश्तों का साथ चाहे, ऐसे फरिश्तों का? और जिस शख्स को कुरान मजीद पढ़ने में दुश्वारी होती है, अटक अटक के पढ़ता है, तो उसको दो अजर मिलेंगे। ये बुखारी की हदीस है कि दोनों ही लोग, कोई भी चाहे वो उसके लिए मुश्किल हो रही है, वो भी ये ना सोचे कि मैं पीछे रह गया मुझे क्या मिला, नहीं, जो इसमें आसानी पाता है, जिसको ये आ जाता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, उसको भी अजर मिल रहा है, कोई इससे खाली हाथ नहीं जाता। जो इसकी मजलिस में आ गया इसको सीखने के लिए, वो भरी हुई झोलियां लेकर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन कुरान पढ़ने वाला आएगा तो कुरान कहेगा ए रब इसको मुजय्यन कर दे, नहीं इसको सजा दे, तब इसको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा ए रब इसको सजा दे तो इसको इज्जत वाले हुल्ले पहनाए जाएंगे, यानी कपड़े इज्जत वाले पहनाए जाएंगे। फिर कुरान कहेगा ए रब इससे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा। फिर उस शख्स से कहा जाएगा कुरान पढ़ और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। तो ये कुरान इस तरह से उस दिन इज्जत दिलाएगा, इस तरह से उस दिन सिफारिश करेगा कि अल्लाह इससे राजी हो जा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के पेट में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है, वो वीरान दिल है जिनके दिल में कुरान नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जो शख्स कुरान पढ़ने में मशगूलियत की वजह से मेरा जिक्र नहीं कर सका, मुझसे दुआ नहीं कर सका, मैं इसको दुआ करने वालों से भी ज्यादा अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, कि अगर आपको इतना वक्त कुरान सीखने में पढ़ने में इसी के साथ आपकी मशगूलियत लगी हुई है, इसी के अंदर आप मसरूफ है, तो याद रखें जो लोग दुआएं मांग रहे हैं उनसे भी ज्यादा अल्लाह ताला आपको अता करेगा। कि इस बंदे को दुआ मांगने की भी फुर्सत नहीं मिल रही इस कुरान में मशगूलियत की वजह से, अल्लाह ताला फरमाते हैं दुआएं मांगने वालों से भी ज्यादा मैंने इसको अता कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह की मखलूक में कुछ लोग ऐसे हैं जो अहलुल्लाह है, अल्लाह के अहल हैं, समझे, अल्लाह के अहल, जैसे होता है ना किसी के अहल है, किसी की फैमिली है। तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल कुरान, वो अहलुल्लाह है और अल्लाह के खास बंदे हैं, खास बंदे। तो आप अल्लाह के स्पेशल बंदों में शामिल हो जाते हैं जब आप कुरान वाले बन जाते हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया जो भी ये पसंद करता है कि उससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें, आप पसंद करते हैं कि आपसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें? उन्होंने फरमाया कि जो ये चाहता है ना कि उससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करें, तो वो गौर करे कि अगर वो कुरान से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और फिर अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसहफ में कुरान, यानी इस कुरान में देखे बगैर पढ़ने का अजर 1000 दर्जे है और इस कुरान को देख के पढ़ने का अजर 2000 दर्जे है, डबल अजर है। सुभान अल्लाह। फिर देखें जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं वो भी इस हदीस को जरा गौर से सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपने बेटे को नाजरा कुरान पढ़ाया तो उसके अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने इसको जुबानी कुरान पढ़ाया तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको ऐसी सूरत में उठाएगा कि उसके, सुभान अल्लाह, उसकी सूरत ऐसी होगी जैसे 14वीं रात का चांद। और उसके बेटे से कहा जाएगा कुरान पढ़ो, और जब वो एक आयत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके बाप का एक दर्जा बुलंद कर देगा, हत्ता कि उसका बेटा तमाम कुरान पढ़ लेगा। और फिर इसी तरह एक शख्स ऐसा था कि जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि एक जगह से गुजरे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक कब्र में अजाब हो रहा है, और उन्होंने फिर देखा कि कुछ अरसे के बाद वो दोबारा गुजरे तो वहां पे अजाब की जगह अब उसके ऊपर रहमत हो रही है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल फरमाया कि या अल्लाह ये किस तरह, जब मैं पहले गुजरा था तो यहाँ पे अजाब हो रहा था इस कब्र वाले को, और अब जब गुजरा हूँ तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। तो उनको बताया गया कि जब ये बंदा फौत हुआ तो इसकी बीवी हामिला थी, इसकी बीवी हामिला थी, और उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा जब बोलने के, सीखने के, समझने के काबिल हुआ तो उसकी माँ ने उसको अल्लाह के दीन सीखने के लिए बिठा दिया, और जब इसने पहली दफ़ा कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आई कि मेरे बंदे का बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरी हम्द बयान करे, मेरी सना करे, मेरा नाम ले, और मैं ज़मीन के नीचे उसको अजाब दूँ। तो अल्लाह ताला ने उसके अजाब को दूर कर दिया। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے، بہت خیر ہوتی ہے، تو خیر آپ کے گھر کی طرف بڑھے گی، کیونکہ آج سے آپ قرآن پاک کے طالب علم بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت کو قصدن سنا اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھا جائے گا، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہو جائے گی، نور بن جائے گی اس کی تلاوت۔ تو اب جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس کے آداب میں یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کے آئے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ غسل کر کے آئے، منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کر لیں، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں کہ جو یعنی جیسے کوئی اگر کچا لہسن ہے یا پیاز ہے یا اس طرح کی چیز کھا کے پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کیونکہ فرشتے قرآن کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو خوشبو اچھی لگتی ہے، تو آپ کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، آپ کو خود بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور جب جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں ساتھ ساتھ آپ جو آیات ایسی آتی جائیں جن میں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات ہو، کوئی قہر کی بات ہو، کوئی اس کی گرفت کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ان ایسے عذابوں سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اور رونا آئے اللہ کے خوف سے تو رونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رو، اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو، رونا آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کو پہلے علم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ ٹھوڑیوں کے گل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی رحمت کی بات ہو، مغفرت کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اس کی مغفرت کا سوال کریں، اسی طرح جب اللہ کی عظمت کی آیات پڑھیں تو سبحان اللہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ کو کوئی بھی ایسی آیت جو آپ کے اوپر بہت دل کو اثر کرے، دل کو چھو جائے، تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے، اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیں، اور جو آپ کے اس وقت کے جذبات ہیں ان کو بھی لکھ لیں اس وقت، یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا، کبھی آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے یہاں پہ یہ میرے اس وقت جذبات تھے جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔